ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम बच्चों की ईश्वरीय भाषा सबसे अलग है। वैसे भी हम देखते हैं बाबा के जो प्यार भरे बच्चों के प्रति जो वरदान निकलते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे लाडले बच्चे, या फिर बाबा कभी बच्चों को इतना प्यार से बुलाते हैं, तो ये भाषा किसी भी सत्संग में, किसी भी गुरु के पास, किसी के पास ही नहीं होती है। लेकिन जो भाषा यहाँ पर है, ब्रह्मा मुख वंशावली, ईश्वर संतान, ये केवल ये ईश्वरीय परिवार में है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों की जो ईश्वरीय भाषा है वो सबसे अलग है। दूसरी बात बाबा ने कही कि जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते होंगे उनकी निशानी क्या होगी, वो आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे, फरमानबरदार होंगे। तीसरी बात बाबा हमेशा हर कार्य को कहते थे, चाहे पुरुषार्थ हो, चाहे कोई भी कार्य करते हो, लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो एक्यूरेट कार्य के लिए आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है, वो हम मुरली में सुनेंगे। फिर आज हम डबल मुरली सुनेंगे, प्रातः क्लास भी और रात्रि क्लास भी हम सुनेंगे। अभी सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ, तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ, तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। आज का प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है, तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है। तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है, तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है। इतना अच्छा है जो बाबा ने बताया, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। बाबा ने मुरली में ये भी कहा है, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम वानप्रस्थ में, तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना, बाप ही सबको वापिस ले जाते हैं, तुम बच्चों को घर जाने से पहले सतो प्रधान बनना है, इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। बाबा बार बार बीच बीच में ध्यान खिंचवाते, एकांत का, साइलेंस का अभ्यास करो, और इसी से ही हर प्रकार की समस्या का भी समाधान होता है और हल्के हो जाते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाए। दो बातें, एक तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते ही फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते। यहाँ के पुरुषार्थ से हम जाकर के सतो प्रधान बनते, फिर धीरे धीरे आते ही लास्ट में तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, कितना याद किया लेकिन कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ प्राप्ति नहीं थी। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। मोटी बुद्धि क्या थे, बस पूजा करनी है, हम ये हैं, हम गिरे हुए, हम ये हैं, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, लेकिन पावन बनना ये तो नहीं पुकारते रहे। इसलिए बाबा कहते हैं उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। अंतर अब है महीन बुद्धि का ज्ञान। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझाना है आत्मा स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है, सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती, माया भी कोई कम नहीं है। बाबा कहते माया भी बहुत कुछ न कुछ करती है, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब क्या बनना है, अब अभूल बनना है। आज का पुरुषार्थ, सतो प्रधान बनने के लिए एकांत में जाना है और दूसरा अभूल बनना है। भूली नहीं करनी है, करते रहते हैं, कभी भूल करते हैं ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद एक भूल को छिपाने के लिए दूसरी, दूसरी के बाद तीसरे, वो इकट्ठी होती रहती है। तो बाबा कहते हैं भूल नहीं करनी है, अगर भूलते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स में भी नंबर वार पास होते हैं, नंबर वार फिर कमाई करते हैं। पढ़ाई एक होती है, पढ़ने वाले सब साथ होते हैं, लेकिन पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है। कोई तो कहाँ ऊंच बन जाता है, कोई जाकर के छोटी कमाई करता है, नंबर वार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबर वार पास होते हो, फिर नंबर वार मर्तबा पाते हो, कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ प्रजा और दास दासियां। प्रजा में भी क्या है, दास और दासियां। तो बाबा कहते कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा और कहाँ दास दासियां। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो सपूत, आज्ञाकारी, वफादार और फरमानबरदार होते। अभी नोट करो, अच्छे स्टूडेंट की निशानी आज्ञाकारी, सपूत, वफादार और फरमानबरदार होते हैं। वे जरूर टीचर की मत पर चलेंगे, टीचर जो उनको शिक्षा देंगे ऐसे करना है तो उसको फॉलो करेंगे, वह जरूर टीचर के मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतना मार्क्स भी जास्ती मिलेंगे। इसलिए बाप ने भी बच्चों को बार बार समझाया है, इसलिए बाबा भी बच्चों को बार बार समझाते हैं। क्या समझाते, बच्चे गफलत ना कर, गफलत करते हैं ना, पता भी नहीं पड़ता है, कई गलतियां हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे गफलत ना करो, ऐसे मत समझो कि कल पहले भी फेल हुए थे। कई पुरुषार्थ ना करने वाले बच्चे क्या है, कितने समझदार है, कहते क्या करे, पहले भी हुए थे, अभी भी हुए, फिर भी होंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं करना है, बाबा कहते ऐसे मत समझो, पहले भी हुए थे फिर भी होना है। बाबा कहते नहीं, पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, कलब पहले भी फेल हुए थे, बहुतों को ये दिल में आता होगा हम सर्विस नहीं करते तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सावधानी बाबा ने क्या दी, बाबा ने सावधानी क्या दी कि बच्चे पहले तुम सतो प्रधान थे, अभी ऐसा नहीं सोचो हम फेल हो जाएंगे, पुरुषार्थ करो। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, पुरुषार्थ करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, चढ़ेंगे धीरे धीरे। इसलिए भूलो मत, चढ़ने में मेहनत भी होती है, धीरे धीरे चढ़ते हैं और कभी कभी सांस भी फूलता है, तो बाबा की चीज उसमें डरो नहीं, चढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन भूलो मत, परंतु माया भुला देती है, नंबर ना फरमांबर दार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं। माया की निशानी, जो बाप ने डायरेक्शन दिया, बाबा से प्रतिज्ञा की, फिर भूल जाते, चलते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षा देते हैं ऐसी शिक्षा और कोई नहीं देंगे। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरीय भाषा, कोई समझेगा? यही ब्रह्मा वंशी जाकर के विष्णु वंशी बनेंगे, तो बाबा कहते हैं भाषा को कोई जानते नहीं, ये है नई भाषा। इनको भी समझाना पड़ता है कि नई भाषा कौन कौन सी, आज सारा दिन मनन करना बाबा की नई भाषा कौन सी है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे हैं, फिर बाबा क्या कहते, रूहानी बच्चे, फिर बाबा कहेंगे नैनो के सितारे, कितनी नई भाषा जो दुनिया नहीं जानती है। ये रूहानी नॉलेज कोई दे नहीं सकते। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा, बाबा के टाइम पर कोई संस्था थी उसका नाम था रूहानी संस्था, तो बाबा कहते रूहानी संस्था तो कैसे हो सकती है, रूह का भी ज्ञान नहीं है तो कैसे हो सकता है, नाम रखा है। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर और कोई हो न सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, कॉपी करते हैं, नकली चीज बनाते हैं। कलयुग में तो हर चीज नकली नकली होती है, जैसा वो होगा ना कोई वैसा बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल इमिटेशन बहुत हो जाती है, ये है नई बात। फिर बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ना सके। बाबा कहते नई बात है और तुम बच्चे बहुत थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर है नहीं, फिर थुर खड़ा हो जाता है। अभी फाउंडेशन है नहीं, सतयुग के अंदर फिर फाउंडेशन होगा, बाकी ताल तालियां नहीं रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझाने देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, ये लंका है, वह लंका तो समुद्र के पार है, वो लंका जो बताते हैं उसको श्रीलंका कहते हैं, वो ओशन पार है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया ही लंका है, उस लंका को थोड़ा नहीं कहेंगे, यही सारी दुनिया लंका है। वह लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, वो समुद्र से पार है, और ये लंका कौन सी, बेहद की, बाबा कहते समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है, वह है हद की बातें, बाप बेहद की बातें समझाती हैं, एक ही बाप समझाने वाला है, ये पढ़ाई भी है, समझाने वाला भी एक, पढ़ाई भी एक, ये पढ़ाई है, जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, लोकी में होता है ना, जब तक पढ़ाई के रिजल्ट निकले, आगे जाके पढ़ना है, जॉब करने है, क्या करना है, तब तक वो अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट्स का काम क्या है, स्टूडेंट्स का काम पढ़ाई पे अटेंशन देना। अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ाई पर अटेंशन देना। उठते बैठते चलते फिरते याद करना है, स्टूडेंट्स की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं, कहां ना पास ना हो जाए। जब इम्तिहान के दिन आते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं, रात भर जागेंगे, सारा दिन जागेंगे, इतना पढ़ेंगे, और जब एग्जाम लेने जाते दिमाग थका होता है, क्योंकि सारा साल तो पढ़ा ही नहीं है, 15 दिन पढ़ के क्या करेंगे, दिमाग इतना थका होता है, पूरा पेपर नहीं दे पाते, फेल हो जाते हैं, कहते हमने इतनी मेहनत की फिर फेल हो गए। अरे शुरू से मेहनत करनी थी ना। तो बाबा कहते हैं इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं, कहां ना पास ना हो, खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है, शुरू के टाइम पर, बाबा के टाइम पर क्या था, माउंट में तो इतने लोग नहीं थे, और चारों तरफ यहाँ नीचे ऊपर चारों तरफ बिल्कुल शांति का वातावरण था। और मुरली के बाद बाबा बच्चों को कहते कहीं भी चले जाओ, एकांत में जाकर के बैठो और मुरली का मनन करो। बाबा भी खुद जाते थे, बाबा अमृत वेले के बाद भी यहाँ जो ईश्वरारी का ऑफिस है, बाहर ऑफिस के बाहर खड़े होकर के, फिर चारों तरफ चक्कर लगा करके यहाँ मेन गेट से बाहर आते हुए कॉर्नर तक बाबा आते थे। तो बाबा अमृत वेले के बाद भी योग कर एकांत में जाते थे। अभी तो बच्चे जाते भी हैं, लेकिन क्या करते हैं, आवाज भी करते हैं। बाबा अकेले नहीं जाते थे, बाबा पूरे ग्रुप को लेके जाते थे, ताकि अंधेरे में कोई ऐसे वैसे, क्योंकि जानवर आते हैं उनको पानी पीना है, वो तो आते ही नहीं थे, देख करके वो सफेद वस्त्रधारी को देखकर खुश हो जाते थे कि देवताएं निकले हैं, फरिश्ते निकले हैं। अभी भी कोई जाते हैं तो अकेले नहीं जाएं, क्योंकि अंधेरे में कभी न कभी कोई न कोई जंगल में रहने वाले, उनका भी तो घर है, पानी पीने के लिए आते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अकेले नहीं जाए, दो या तीन जाते हैं तो बिल्कुल साइलेंस में जाए। तो बाबा कहते एकांत के स्थान तो बहुत है, शुरू शुरू में क्लास पूरा करके तुम सब पहाड़ों पर चले जाते। पहाड़ों पर कोई था ही नहीं, सब पहाड़ अपने ही थे, कोई कहाँ चला जाता, कोई बाबा की पहाड़ी चला जाता, कोई किस पहाड़ी पर चले जाते, तो बाबा खुद भी लेके जाते थे। तो बाबा याद करा रहे हैं, शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ी पर चले जाते। चले नहीं जाते थे, वहां तपस्या करते थे, फिर साथ साथ क्या करते, नाश्ता भी करके आते थे, क्योंकि वहां पर क्या मिलता था, चेरी मिल जाती थी, छोटे छोटे आम मिल जाते थे, जामुन मिल जाता था, कई प्रकार के फल होते थे, अभी तो देखने को नहीं मिलते, उस समय ये सब होते थे। सुबह सुबह नाश्ता भी करके आ जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जा रही है, अब समझा आपने, उस समय नॉलेज इतना गहरी नहीं थी, बाबा ने गहरे अनुभव कराए, अब नॉलेज डीप है तो उस डीप नॉलेज का अनुभव करना है। दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट्स को एम एंड ऑब्जेक्ट याद रहता है, ये है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। ये कौन सी पढ़ाई है, वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके, साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, बच्चे तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। बाबा कहते, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पड़े व न पड़े, समझे न समझे, पड़े व न पड़े, वापिस तो सबको जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पड़े न पड़े, वापिस तो सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगे, वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी बहुत वंडरफुल बना हुआ है। देखते हैं ना, वो आत्माओं का झाड़ जो कितना सुंदर लगता है। दुनिया में कोई ऐसा झाड़ बना नहीं सकता, ना समझ सकता ये क्या है। अलग अलग सेक्शन बने हुए, स्टार्स चमक रहे हैं, इतना सुंदर उसको देख करके बाहर वाले भी इतना उनको आश्चर्य लगता है कि इतना सुंदर किसने बनाया। तो बाबा कहते हैं, आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं है। और फिर बाबा ने उदाहरण दिया है, लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, क्योंकि बहुत समय पहले लीवर घड़ी थे, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती थी और उसका टाइम एक्यूरेट होता था। और शुरू में बाबा के टाइम पर यहाँ पांडवपुर में लगी हुई भी थी, और जो भी घड़ियां किसी को मिलानी होती थी, वो लीवर घड़ी का टाइम देकर के अपनी घड़ी, हाथ की घड़ी या दूसरी घड़ी के टाइम को सेट करते थे। सिलेंडर घड़ी में क्या होता, थोड़ा थोड़ा कभी चेंज हो जाता था। तो बाबा कहते हैं कि बाबा, लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी वालों की निशानी क्या है, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट होती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता। अब सुनो, बाबा बता रहे हैं किन बच्चों का, कुछ बच्चों का बुद्धि योग लीवर मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। इसमें किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है, और कोई तो ऐसे हैं जिनका लगता ही नहीं। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किसका सिलेंडर होता है, कोई का तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। घड़ी जैसे कि चलती नहीं, होता है ना कमरों में घड़ी लगी पड़ी, सेल नहीं डालते, चलते चलते बंद हो जाती, देखते भी नहीं है कि घड़ी बंद हो गई। थोड़े टाइम के बाद उनको बोलेंगे, अरे घड़ी बंद है, अच्छा अच्छा इसमें सेल डालते, जब याद आएगा तब सेल डलेगा। तो बाबा कहते रोज ही उसको बैटरी को चार्ज करो ना। तो बाबा कहते हैं, कईयों का सिलेंडर रहता, कोई का तो बिल्कुल लगता नहीं, घड़ी जैसे कि चलती नहीं है। तुमको बिल्कुल क्या बनना है बताओ, अभी क्या बनना है, कौन बताएगा, बिल्कुल कौन सी घड़ी बनना है, बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे। राजपद पाने वाले कौन होंगे, जो लीवर घड़ी जैसे एक्यूरेट होंगे, और जो सिलेंडर घड़ी जैसे होंगे वो प्रजा में चले जाएंगे। तुमको भी बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना मीन्स एक्यूरेट बनने का करना। राजाई पदवानों के लिए भी कोटों में कोई कहा जाता है, यही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं बरोबर मेहनत है। कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते, कितनी अच्छी बात करते। बाबा को कहते बाबा, सामने बैठे हुए देखते हुए बाबा को कहते बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। आप पहलवान देखा है ना, कई तो सब देखा, और कुश्ती करते हुए देखा है ना, कुश्ती करने वाला एक बड़ा पहलवान और उसके आगे छोटा बच्चा हो तो कभी नहीं लड़ेगा, तो उसको पहलवान को पहलवान ही चाहिए। तो बाबा कहते माया भी जबरदस्त लड़ेगी, मल युद्ध होती है ना, उस समय मल युद्ध कहते थे, फिर कहते कुश्ती और फिर इंग्लिश में कहते बॉक्सिंग, तो मल युद्ध होती है ना, बाबा उसमें बहुत बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान ही जानते हैं। जब वो बॉक्सिंग करते उनको पता है कहाँ से मुक्का लगाना है, कहाँ से इसको पकड़ना है, उनको वही जानते। तो माया भी कोई कम पहलवान है, उसको पता है कि बच्चों को कहाँ से मारना है, कहाँ से पकड़ना है। तो बाबा कहते पहलवान पहलवान को ही जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, महावीर बच्चे भी हैं, उसमें भी नंबर वन है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया अच्छी तरह से तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे तूफान लाए तुम खबरदार रहना। होता है ना जब किसी को कहते डरो नहीं खबरदार रहो, तो माया आ नहीं सकती। माया कितना भी तूफान लाए और कितना हैरान करे लेकिन तुम खबरदार रहना, कोई भी बात में हारना नहीं है। मनसा में तूफान भल आए, वो उस समय की बात है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं अभी ऐसा पुरुषार्थ हो कि मनसा में भी तूफान ना आए। बाबा कहते मनसा में तूफान भल आए कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते ही हैं किसके लिए? तूफान आते हैं बाबा ने कहा गिराने के लिए, और हम क्या कहेंगे? मजबूत बनने के लिए, अनुभवी बनने के लिए। बाबा ने कहा तूफान आते हैं गिराने के लिए। माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहें? पहलवान एक कहता मैं बहुत बड़ा पहलवान, कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं है, वो पहलवान है। खा खा करके मोटा होता जाएगा तो कहेंगे मैं पहलवान हूँ, शक्ल से पहलवान है, लेकिन उसको लड़ना भी तो चाहिए ना। कई ऐसे हैं कहते हम ये पुरुषार्थ अच्छा करते भी, कभी माया से जीते भी हो या नहीं जीते हो, तो ऐसे भी होते हैं युद्ध के मैदान में योद्धा खड़ा है और खड़ा कहते मैं योद्धा हूँ, लेकिन लड़ने वाला दुश्मन आया तो पीछे भाग जाता है, कहते मैंने कभी लड़ाई की ही नहीं तो कैसे लड़ो, योद्धा किस बात का। तो बाबा कहते हैं माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के वश झट गिर पड़ते हैं। ये बाप तो रोज समझाते हैं कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाए पैसे का पद पाए। अभी नोट कर लो, बेकायदे काम करना नहीं छोड़ेंगे तो पाए पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं कि हम ना पास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो ये याद भी विनाश, तो वह याद भी विनाश को नहीं पाते। तो बाबा कहते मेरे को याद करेंगे ना तो बाबा की याद जो है ये बढ़ती जाएगी, विनाश को नहीं पाते। थोड़ा भी याद करने से, बाबा बता रहे रहा, थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। कितनी अच्छी बात कि थोड़ा भी बाबा को याद करेंगे सत्यों में तो आ जाएंगे, चाहे पद बल कैसा भी मिले, तो ये याद विनाश नहीं होती, अविनाशी है। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। कोई छिप नहीं सकते, कोई कितना कहे मैं पुरुषार्थ करता हूँ मेरे को कोई जानता नहीं है, कोई कहे मैं बहुत करता हूँ मैं ऐसा हूँ, बाबा कहते बहुत और थोड़ा करने वाले अंदर का पुरुषार्थ क्या वो कभी छिप नहीं सकता है, बाद में तो मालूम पड़ ही जाता है। कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएंगे तो फिर किस पद को पाएंगे, मिस अभी दिल शिकस्त हो जाएंगे तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद नहीं पा सकते। बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। बाबा कई बार बच्चों को शुरू में इशारा भी देते थे, बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ अभी ढीला हो रहा है। कभी कभी होता ना अच्छे पुरुषार्थ करने वाले फिर ढीले हो जाते थे, तो बाबा उनको इशारा देते थे। फिर कई बार बच्चे बाबा से पूछते थे, बाबा उनको गाइड करते थे। फिर बाबा ने कहा खुद को खुद चेक करो। फिर आज बाबा ने क्या कहा, आगे चल करके खुद भी समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल क्लैमिटीज। कोई पूछ कर आती है क्या? तूफान कहेगा अच्छा मैं आ रहा हूँ, ठहरो ठहरो तुम्हार रुको। तूफान, नेचुरल क्लैमिटीज, आंधी तूफान, बरसात, ये कभी पूछ के आते हैं? अचानक आ जाती है, पता भी नहीं होता। कहेंगे अरे अचानक आ गई, क्यों आ गई, क्यों आ गई, पूछ के थोड़ी आएगी, ऐसे मौसम तो नहीं है, क्यों आई, अरे क्यों, क्या क्या, अपनी सेफ्टी पहले रखनी है। तो बाबा इसलिए बता रहे हैं तूफान, बरसात, नेचुरल क्लैमिटीज पूछकर आती है क्या? रावण तो जैसे कि बैठा ही है। अब कहते हैं ना रावण क्यों आया, ऐसे क्यों आया, माया क्यों आई, बाबा कहते जैसे तूफान नेचुरली आते हैं तो रावण भी ऐसे ही बैठा है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल इम्तिहान है। जो पांच सोते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। राजा जरूर समझदार चाहिए जो रेत अर्थात प्रजा को संभाल सके। ICS इम्तिहान में थोड़े ही पांच सोते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतु प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतु प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भाव। ये वही गीता का एपिसोड है। बाबा गीता ज्ञान सुना रहे ना, तो बाबा कहते ये वही गीता का एपिसोड है। डबल सिरताज बनने की ही गीता है, गीता का वही एपिसोड है और डबल सिरताज बनने की गीता है। डबल सिरताज किससे बनेंगे? गीता के ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं। बनाएंगे तो बाप ना, ऐसे थोड़ी बनेंगे। बनाने वाला बाप है, पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं, उनके पास धारणा भी अच्छी होती। बुद्धिमान की निशानी धारणा अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि अभी रात्रि क्लास भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सुनेंगे, बहुत अच्छी रात्रि क्लास है, लेकिन डेट कौन सी है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। रात्रि क्लास की डेट है 5/1/1969। बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए और 5 तारीख, कितना लेटेस्ट मुरली, कितना नजदीक की मुरली है। और बाबा ने कितने प्यार से बात की है, इसको कोई भी मिस नहीं करे, बहुत ध्यान से सुनना है। बच्ची यहाँ क्लास में बैठे हैं, बाबा के पास बैठते थे, बाबा बहुत रमणीक ढंग से मिलते थे। और जानते हैं हमारा टीचर कौन है? बाबा पूछते बताओ कौन है हमारा टीचर, जानते हैं हमारा टीचर कौन है? अभी यही याद है कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट्स को सारा समय याद रहते, बच्चे ये जानते हैं कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट्स को तो याद है ना कि मेरा टीचर कौन है। किसी स्टूडेंट को पूछो तुम्हारा हिस्ट्री का टीचर कौन है, फटाफट नाम बताएगा। तो बाबा कहते हैं अभी यही याद है कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट्स को सारा समय याद रहती है, यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते। अब देखो बाबा बता रहे, देखो ये बच्चे कैसे स्टूडेंट, मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप जो कब मिला ही नहीं है उसी को भूल जाते, बाकी सबको याद करेंगे। ऐसा रूहानी बाप जो कब मिला नहीं उसको भूल जाते हैं, संगम युग पर ही मिलता है। सत्युग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं, ये याद दिलाते हैं बच्चों को, पक्का हो जाए कि ये संगम युग है, जिससे हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों याद आने चाहिए। तीनों कौन? बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद करो, गुरु को याद करो तो भी तीनों को याद करो, बाप को याद करो तो भी तीनों को याद करो, टीचर को याद करो तो भी तीनों को, गुरु को भी याद करो तो तीनों याद खुद आने चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को ही सतो प्रधान कहा जाता है। जब पवित्र बनते तब तो सतो प्रधान बनते हैं ना, ये वह रहते ही है सतयुग में। अभी चक्र लगा करके आए हो और अभी है संगम युग। कल्प कल्प बाप ही आते हैं और पढ़ाते भी है, आना केवल एक नहीं, पढ़ाते भी है, पावन बनाते, साथ ले जाते, पढ़ाते भी हैं। बाप के पास तुम ऐसे रहते हो ना, ये भी जानते हो कि ये सच्चा सतगुरु है और बरोबर मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता भी बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते। अब बताया क्या बात है? बताओ, ड्रामा प्लान अनुसार हमें पुरुषार्थ करके बाप को फॉलो करते हैं। तो बाबा के त्याज का लेसन क्या करना है? बाप को फॉलो करना है। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं, जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। शिव बाबा कहते जैसे ये पढ़ रहा है ऐसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं कि बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते, बाबा को भूले, शिक्षा को भूले, फिर क्या होता है, सतगुरु को भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते। बाप को भूले, शिक्षा भूले, याद की यात्रा को भूल जाते। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता। क्या क्या भूले? बाप को भूले, शिक्षा भूले, याद की यात्रा को भूले। और बाप को भूलने से ज्ञान तो कितना भी समझाओ बुद्धि में बिल्कुल नहीं बैठेगा, ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ ये भी भूल जाता है, मैं स्टूडेंट हूँ ये भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करो तो टीचर सतगुरु को भी याद करना पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी साथ चाहिए। बाप की याद में है क्या है? बाबा की याद में है करामत। कितने योग के अनुभव हैं, एक एक सुनाता है। हम बाबा की याद में बैठे, बाबा ने कैसे मदद किया, तो बाबा की याद क्या है? ये है करामत। और वो करामत से रियलाइजेशन भी होती है और अनुभव भी होते हैं। बाप की याद में है करामत। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई को सिखला न सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में ही सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है, पूरा कल्प लगता है नीचे उतरने और चढ़ने में कुछ भी टाइम नहीं है। अभी एक ही जन्म में सतो प्रधान, तो बाबा कहते हैं अभी एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है। अब मेहनत किसको करनी है? बच्चों को करना। हम कहेंगे दूसरी दुनिया वाले भी करें, बाबा कहते वो क्यों करेंगे, उनको तो करना नहीं है, उनको तो सत्संग में आना नहीं है, आना तो तुम बच्चों का है। इसमें सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले मेहनत करेंगे नहीं। अभी कई स्थानों पर क्या होता है, बाबा ने पहले भी बताया और आज भी बताया, दूसरे धर्म वाले सब आएंगे, कई स्थानों पर आते दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं, वो आकर के उनको योग अच्छा लगता है, साइलेंस का वातावरण अच्छा लगता है, ज्ञान की बातें सुनते उनको इतना जैसे इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बाबा कहते दूसरे धर्म वाले आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, योग का पुरुषार्थ कर लेंगे, वो जाकर के फिर अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। तो आज बाबा राज बता रहे, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, धर्म संस्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है, फलानी फलानी ड्रेस से शुरू शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, कैसे कैसे वो धर्म संस्थापक भी आ रहे बाप से वर्षा लेने के लिए, योग में अपनी अपनी ड्रेस में आते थे, आना तो सबको है, अभी भी कई आ रहे हैं, लेकिन वो धर्म संस्थापक योग से शक्ति लेके जाएंगे, फिर अपने धर्म की स्थापना में उनको बहुत मदद मिलती है। तो बाबा कहते धर्म संस्थापक आते, पाठ बजाया हुआ है, फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रधान में वह आते हैं, समझ भी कहती हैं, जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। बाबा ने क्या राज बताया कि समझ सकते हैं, जैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, ऐसे सभी धर्म वाले भी ऐसे ही बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे, अब दूसरा, एक तो वो सतो प्रधान बनेंगे, योग अच्छा लगेगा, फिर पवित्रता का दान बाप से लेंगे। तो बाबा कहते सभी बुलाते हैं, हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है, अंत में आएंगे तो कहेंगे। अब बाबा कहते अभी तक भी कई कई आत्माएं आ रही हैं, तो जो अंत में आएंगे उसके लिए बाबा ने क्या कहा, उनके लिए कहेंगे 4999 वर्ष वो परमधाम में बैठे, एक वर्ष के लिए, एक जन्म के लिए आए, और जो शुरू से आते हैं उनको कहेंगे 5000 वर्ष पाठ बजाए, और जो थोड़ा पीछे आते उनके लिए कहेंगे। तो बाबा कहते हैं अनेक बार घर चले जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में रहते ही नहीं है, अब जो नहीं रहेंगे घर में वो हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि जाएंगे हाँ घर को टच किए और चले, बस हाथ लगा चले। तो बाबा कहते कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते, पूरे पांच, लास्ट में एक सेकंड के लिए आए, आए और मच्छरों जैसा आए फिर चले जाते हैं, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे, और हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे, क्योंकि एक जन्म संगम युग का हो गया ना। तो फिर बाबा वो भी राज बताते हैं, है हमारे 5000 वर्ष, लेकिन एक ये भी हो गया ना, तो बाबा कहते हम कहेंगे 4999 वर्ष सृष्टि पर रहे। ये तो बच्चों को निश्चय है, कौन सा, कोई 83 लेंगे, कोई 84 लेंगे, कोई 83 जन्म, कोई 84 लेंगे, ये तो बच्चों को निश्चय है कि 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे, अब 83 भी लेंगे, 82 भी लेंगे, 80 भी आएंगे तो सतयुग में ना, तो बाबा कहते कोई 84 पूरे 84 लेंगे, कोई 83 लेंगे, जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, अब क्या कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार, और क्या कहेंगे, मैं गुड मॉर्निंग कहेंगे, क्या कहेंगे, गुड नाइट। तो आज हमने सुबह गुड मॉर्निंग किया और रात को फिर प्यार से इन बातों, बाबा की मीठी मीठी बातों को याद करते हुए बाबा से गुड नाइट भी कहेंगे, रात को भी कहेंगे, अभी भी कहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है हमारा काम है रिस्पांस देना। तो बाबा कहते हैं मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। देखो रात को बाबा कैसे क्लास कराते हैं, उसका अनुभव हुआ ना, बाबा कभी कभी रात की क्लास में इतना हंसाते भी थे, फिर बाबा से बच्चे प्रश्न पूछते थे, बाबा इसका उत्तर क्या है, बाबा कहते अच्छा शिव बाबा से पूछो, कभी कभी बाबा भी हंसाते थे, बाबा कहते अच्छा मैं शिव बाबा से पूछ के बताऊंगा, देते भी थे लेकिन बच्चों को हंसाते भी थे। रमणीक भी क्लास, रात की क्लास ऐसी रमणीक होती थी जैसे घरेलू होते हैं ना, परिवार में सारे सदस्य इकट्ठे हो जाएं, बैठ जाएं, आपस में बहुत ज्ञान की चिट चैट करें, इस प्रकार से होती थी। और उसके अंदर बाबा कई गहरे राज भी खोलते थे, जैसे आज गहरा राज खोला कि धर्म संस्थापक आएंगे, वो अपना अधिकार लेके जाएंगे, योग की शक्ति ले जाएंगे, पवित्रता का दान ले जाएंगे। अब सुनते धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है सतु प्रधान बनने के लिए याज की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना। पहला बैटरी चार्ज करनी है, दूसरा अभूल बनना है, तीसरा अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, चौथा कोई भी गफलत नहीं करनी है। सतु प्रधान बनने के लिए याज की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है, दूसरा कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह न कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना है, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। आप सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज की तारीख है 23 तारीख। मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हो, लेकिन जब वाणी में मधुरता मिठास आ जाती है तो फिर संस्कार मिलन की रास होने लगती है। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो तब जय जयकार हो गए। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो तब जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाकी तो शांति वन में शिविर भट्टी आदि के कार्यक्रम चल रहे हैं। ऊपर के डाइनिंग हॉल है ना, वहां पर कई भाई बहने अपनी अपनी चीजें छोड़ देते हैं, तो जिनकी चीज है उसकी चीज को नहीं उठाओ। कोई ना कोई उस चीज को उठा के या तो कहीं रख लेता है या इधर रख लेता है या उठा के ले जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते चोरी करते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसा काम कभी नहीं करना है, किसी की चीज को जरा भी हाथ नहीं लगाओ। कोई चीज मिलती है टेलीफोन एक्सचेंज या रिसेप्शन में दो, जिसमें क्या हुआ है जिसमें पहला तो दादी रतन मोहिनी जी का फोटो। अब दादी से प्यार है, सोचेंगे ये फोटो ले जाओ, दादी को याद करेंगे, बाबा को याद। ऐसा काम नहीं करना, जो चीज जहां लगी वो रख के लगी रहनी चाहिए। अगर कोई उठा के ले जाता है तो फिर संकल्प चलते हैं, प्राप्ति नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है, आपको चाहिए तो मांगो, लेकिन उस चीज को उठाओ नहीं जिसमें पहला क्या किया, रतनमयी दादी का फोटो ले लिया। दूसरा एक पर्स जिसमें 4,500 रुपए थे और दो छोटे केस, हॉट केस, खाना में गरम खाना रखते ना, किसी को चाहिए होगा उठा के ले गए होंगे, फिर ले जाते फिर उसी पे रखो ना, फिर उठा के कहाँ ना कहाँ छोड़ आते। जिसका जिसको खाना रखना है, गरम खाना रखना है, वो ढूंढता रहता है। दो हॉट केस और उसने लेके गए जिस दिन डोसा बना था शायद, वो डोसा बनाने के तवे भी इधर से उधर कर दिए हैं। अब इधर उधर जिसने भी किए हैं हॉट केस को, तवे को, जो जितनी चीजें, क्योंकि वहां काम भी चल रहा है ना, इसके कारण चीजें उठा के कहीं ना कहीं साइड में रख दिए होंगे। जिसने जहां से उठाए हैं साइड में किए हैं, उसको उठा के उसी स्थान पर रखो, ताकि जिसकी वो चीज है उसको लेकर के सेट करे। चीजें तो वहीं पड़ी होंगी, लेकिन उठा के किसी न किसी कॉर्नर में जाके रख देते। अब कॉर्नर में कौन ढूंढने जाएगा, इस बात का सबको ध्यान रखना है। नीचे वाले सुन रहे हैं, ऊपर वाले तो सुन रहे हैं, पांडव भवन के आंगन में या ऊपर डाइनिंग में जो भी सुन रहे हैं, इस बात के लिए बाबा कहते थे, ये भी एक दूसरे की बुद्धि को विचलित करते ना, तो उसका भी बोझ चढ़ता है। इस बात का सबको ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।